السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے حالات کے مطابق تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کوئی کام رکھے ادھر تو مغرب کے بعد رکھے, کیونکہ ظہر سے عصر کے بیچ میں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز ہے. بہرحال یہ کہ ہم آن لائن والے ساتھیوں سے معذرت کرتے ہیں, ہماری بریک لمبی کیوں ہوئی کہ ہم نے اس میں دو نمازیں پڑھی اور پھر کھانا بھی کھایا. تو اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے. دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے بہترین چیزیں لے کر چلیں. اگلے سیشن پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کا بیٹھنے کا بہترین فائدہ حاصل کرنے والوں میں شامل کر لے. جو لوگ بھی ہمارے ساتھی باہر ہیں پلیز آئیے تشریف رکھے اندر, بعد میں جب آتے ہیں تو پھر وہ سب کی توجہ کے بٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 66 جو ہمارے کلچر میں بہت عام آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو مذکر اور مؤنث کے صیغوں کو جمع کر کر ایک بات کی دعوت دی, اور وہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اگر قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتا کیا چلتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ واحد مقام ہے کہ جہاں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی دعوت دی گئی. اسی طرح سے چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے گا. سورۃ طہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے ایمان والو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس قائم رہو. تقریباً 700 بار قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہوا ہے اور احادیث نبوی اس سے مختلف ہیں. اسی طرح سورۃ المدثر آیت نمبر 42 سے 40, جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی, یعنی وٹ واز دی ریزن جو تمہیں جہنم میں لے آئی. قالوا لم نک من المصلین, تو انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. پتا کیا چلا کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے جہنم سے بچنے میں. پھر سورۃ ماؤن کی آیت نمبر 4 سے 7 میں آتا ہے, فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون الذینہم یراؤن ویمنعون الماعون. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نوٹ کیجئے گا, بے نمازی کی بات نہیں ہے, نمازیں پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. کون جو غفلت پڑھتے ہیں سستی کے مارے, کبھی پڑھی کبھی نہیں, اور ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں آتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر, اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. گویا کہ نماز کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو تربیت اولاد سے پہلے اپنی تربیت میں جو چیز ہمارے سامنے کثرت سے قرآن پاک میں آتی ہے وہ نماز ہے. پھر نماز کا ایک افیکٹ سورۃ العنکبوت آیت 45 میں آتا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب آپ ان ساری آیات کو جمع کریں تو ہم تھوڑا سا اب اس اپنے سیشن میں دیکھیں گے کہ ایک مسلمان عورت اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ رکھے. دیکھیے جب ہم قرآن و حدیث کو جمع کرتے ہیں نا, قرآن پاک میں تو بہت ساری آیتیں مرد عورت دونوں کو جمع کر کے کہی گئی, لیکن جب آپ حدیثیں جمع کرتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے آپ کو کہ تربیت اولاد کے بارے میں باپوں کو بہت تھوڑی باتیں کہی گئی. کثیر مجموعہ جو احادیث کے انشاءاللہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا, بک جس وقت پہنچتی ہے آپ کو دیتے ہیں, اس بک میں وہ احادیث ماشاءاللہ پورے 10-12 صفحوں پہ آپ کے ایسے ایک بہت خوبصورت ہینڈ آؤٹ بن جائے گا کہ صرف اور صرف ماؤں کو مخاطب کیا گیا جن میں وہ. جب بک آپ کے سامنے ہوگی تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ہم کس صفحے سے پڑھیں گے, تو آپ خود بھی ان کو دیکھ کے پڑھ کے دیکھیے گا कि अल्लाह ताला हमें किस खूबसूरत तरीके से सिखाता है कि माएं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अब हम थोड़ी सी बात इस मौजू पे करेंगे कि एक मुसलमान औरत, एक आइडियल वोमेन अपनी औलाद के साथ क्या मामला रखे। बिल्कुल अपने ऊपर लें, रिलैक्स होके सुने। ये कोई ऐसा नहीं है कि तरीका जो हम आपको जहाज चलाना सिखा रहे हैं और आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये वो काम है जो दिन रात आप और मैं करते ही हैं। लेकिन कोई माने ना माने, औरत के औरत पने के अंदर औलाद की तलब है, सच के नहीं। पहले दौर में जब बच्चों की तरबियत फितरत के साथ थी ना, तो छोटी बच्चियां गुड़िया से खेलती थी, लड़के गाड़ी से खेलते थे और लड़कियां गुड़िया से खेलती थी। मां बनना औरत की फितरत में है। सबसे पहली चीज जो आज हम ये देख लें कि अगर आज किसी औरत में जवान होने के बाद, शादीशुदा जिंदगी बसर करने के बावजूद मां बनने की ख्वाहिश नहीं है या मां बनने से वो खौफजदा है, तो ये फितरत से हटी हुई पुकार है। आज ये बातें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे नहीं पैदा करने, वी आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग किड्स, क्यों, टू मच। मैं एक सिस्टर को मिली यूके में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट है, अभी मुस्लिम हुई है। तो मैं उनसे पूछ रही थी, तो वो कहती कि, मैंने कहा कि जब आप अमेरिका से आई हैं और शादी हुई और वट एवर, यानी अब वो मुस्लिम है, तो वो कहती है कि हमारे कल्चर में मां बनने से लड़कियां बहुत खौफ खाती हैं। हत्ता कि मैंने इस शादी से पहले अपने होने वाले मियां से भी कह दिया था कि देख लो तुम मुझसे शादी तो कर रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी भी मां बनना पसंद करूंगी। तो मैंने कहा कि आखिर इसकी वजह क्या। कहती इसलिए कि टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी बहनों का बताने लग गई, अपने जैसी दूसरी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स का, कि वो बच्चे को पैदा करने और उसकी तरबियत के मरहलों को अपने रास्ते की रुकावट समझते हैं। इसी तरह का एक बिल्कुल खुद आंखों से देखा हुआ वाकया, एक बड़ी खूबसूरत सी बच्ची हमारी किसी सिस्टर के पास डे केयर में यूके में, मुझे भी मिलवाने ले आई। यकीन करे ऐसी बच्ची कि जिसको देखो ना तो दिल करता है कि खुद ही इसको गोद में ले लो, इतनी प्यारी बच्ची, गुपली मुपली। मैंने कहा आपके पास कैसे आई। कहती ना इसको मां रखने को तैयार है ना बाप। भाई क्या वजह क्या होगी, मां बाप दोनों पता नहीं मैरिड भी थे कि नहीं, लेकिन आपस में झगड़ा हुआ। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि बच्ची या मां के पास है या बाप के पास। मां कहती है मैं नहीं रखना, मुझे नहीं चाहिए, बहुत काम है मेरे पास, मैं जॉब करती हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, बाप से कहा कि तुम रख लो। तो बाप कहते ना यह घर का भी लोन है, मैं इस बच्ची को अफोर्ड नहीं कर सकता। जरा सोचिए आप और मैं अगर उस बच्ची की जगह होते तो हमारे क्या जज्बात होते। और वो बच्ची खुद देख के प्यार लेती है यकीन करें, लेकिन मैंने ये सोचना, मैं से ये सोच रही थी आखिर वो क्या सर्द मोहरी है कि जिसने दिल से मोहब्बतें भी ले ली, माल मादा जॉब कमाना। कहती सिस्टर तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको होता है बच्चे को माने मिलने जाना होता है, दो घंटे के लिए जाना होता है। कहती आप बिलीव करें कि वो सवा घंटे के बाद वो अपनी अपनी बच्ची को भेज देती है कि ले जाओ ले जाओ, इट्स ओके। उसकी डेकेयरर को कहती कि इट्स टू मच, तुम इस बच्ची को संभाल रही हो, आई कैंट। ये क्या जज्बे है, ये फितरत से हटे हुए जज्बे हैं। हकीकत है कि औलाद इंसान के लिए आंखों की ठंडक और उसके दिल का सुरूर है, नेक बख्ती और खुशी का सरचश्मा। अगर हम अपनी औलादों को अच्छा अखलाक सिखाते हैं, उनको फितरत पे पालते हैं, तो न कि हमारे लिए खुशियां देते अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारे रिस्क में इजाफे का भी जरिया है। एक घर में पहले एक का रिस्क उतरता था, फिर दूसरे का उतरा, दो हो गए, फिर शादी के बाद एक बच्चा आ गया, तो उस घर में अब तीन लोगों का रिस्क आएगा। आप दुनिया भी हिसाब से भी देखिए, जो मुल्क अपने शहरियों की मदद करते हैं तो हर बच्चे के साथ कुछ न कुछ बढ़ जाते हैं ना पैसे, तो अल्लाह ताला के हाँ भी बढ़ते हैं। लेकिन ये सब कब होगा कि जब हम इन बच्चों को सही तरबियत देंगे। सूरत अल कहफ की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की एक रौनक है। लेकिन याद रखिए कि ये रौनक इंसान के लिए खुशी का सबब कब बनती है, जब हम इसको फितरत के साथ पुकारते हैं। तो मां होने के नाते दो तीन बातें, मेरा दिल दो तीन ही बल्कि कुछ और बातें पॉइंट्स में लिखाऊंगी, ताकि हम इस मौजू को अच्छी तरह फिर कल से शुरू कर सकें और हम देखें कि हकीकत में ये चीज है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप मां बनने को एक जिम्मेदारी समझें, इट्स गेटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी है। आप एक इंसान की शख्सियत को डेवलप करने का जरिया बन रही हैं। फिर मैं कहूंगी कि यहाँ खाना पीना ना सोचिएगा, वो तो करते ही है, वो तो जानवर भी खिलाते हैं अपने बच्चे को, भूखा तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन माँ बनना जो है एक नया इंसान प्रोड्यूस करने का जरिया बनता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आप खाना पका रही हैं, जिस वक्त कितनी केयरफुल होती हैं, हल्की सी आपकी लफ्ज़िश जो है हो सकता है कि आपके खाने को जला दे, चावल ज्यादा गल जाए, और कुछ और भी हो सकता है ना। जितना केयरफुल आप कुकिंग करते हुए हैं, उससे ज्यादा केयरफुल होना आपको बच्चे की तरबियत, बच्चे की अखलाकी तरबियत, उसकी मोरल, उसकी इमोशनल नीड्स, पेट नहीं उसको। मेरा ख्याल है मैं इस पूरी सीरीज में पेट की बात बहुत कम करूंगी, इसलिए कि माशाल्लाह हमारे कल्चर की माएं तो हर वक्त बच्चों के इसी खाने पीने की तो फिक्रों में होती हैं, बचपन से लेके उनके फूड पढ़ पढ़ के उनके प्रोटीन और कार्बन लेके आती हैं। लेकिन असल चीज जो है वो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि आप इमेजिनेशन में अपनी गोद के बच्चे को अपने कद के बराबर का सोचे और लिखे, जो बच्चा आज मैं पाल रही हूँ, क्या ये बच्चा आज से 15 साल बाद इस शहर में एक डिसेंट सिटीजन होगा, मुहज्जब शहरी होगा, पाल से मुरादी के प्रोडक्टिव होगा, एक्टिव मेंबर होगा सोसाइटी का? मेरे बच्चे का ब्रेन क्या इस दुनिया को कोई नई इन्वेंशन देगा? मेरे बच्चे का अखलाक और उसका मोरल बिहेवियर दूसरों की नजर में इसको प्यारा करेगा? सोचते जाएं, सोचते जाएं, फिर आपको देखिएगा कि एहसास होगा कि इतने काम मैंने करने। खाना पकाते हुए तो सिर्फ खाना पकाना था ना, खुद अपने हाथ को जलने से बचाना था, खाने को अच्छा टेस्ट देना था, बाद में क्लीनिंग करनी थी। लेकिन अगर एक बच्चे की तरबियत में कमी बेशी हो गई, देखिए कभी ओवर हीटिंग हो जाती है, कभी टेम्परेचर कम रह जाता है तो खाना कच्चा रहता है। बच्चों की तरबियत, इवन मैं अपने आप को लूंगी, आपको भी कहूंगी, हम सब अगर कभी फारिग बैठते हैं ना तो हमें अपने किरदार में कई ऐसी कमियां नहीं दिखती। हम सोचते हैं कि अगर हमें दोबारा मौका मिले बचपन से अपने आप को ठीक करने का तो हम अपना ये नक्स निकाल लें। सच बताएं है कि नहीं? ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और बात करने का अंदाज, माँ बाप और खासतौर पर माँ की बातें करें, ट्रिमर आपके हाथ में कैंची है, आपने हर वक्त बच्चे को ट्रिम करना है। वो ऊंची बोल रहा है, आवाज कम करो, ट्रिम करें। बच्चा ऐसा चल रहा है, उसको करें, चलो तेज चलो, जोश करो, हिम्मत रखो। अक्सर देखिए जहाँ सिस्टर्स बैठती हैं यही काम करती हैं, बच्चे सोचते हैं हमारे मियाँ तो इस सर्दी में भी बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बिस्तर से नहीं निकलते, इनके मुंह में नवाले डालने पड़ते हैं, लुकमे डालने पड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे बच्चा क्या कहाँ से ऐसे हुए, ये मैंने ऐसा किया, मैंने अपने बच्चे को बचपन से इतना डिपेंडेंट कर दिया कि उसको इंडिपेंडेंट होना ही ना आया। और करते हम ये सब कुछ मोहब्बत के नाम पे। कभी मैं किसी से पूछूं, बहुत अच्छा इंसान है एक, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए आपके माँ बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा क्या है, या आपको क्या दिया? तो कहते हैं कि मुझे दो तोहफे अपनी माँ के बड़े पसंद है, एक उन्होंने मुझे बचपन में नमाज का भी कर दिया। तसव्वुर में नहीं आता था कि 7 साल के बाद घर पे रहूं और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना। मैं आज भी हर नमाज पे अपनी माँ को सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए ये कोशिश ना की होती तो मैं कभी भी इस तरह का पक्का नमाजी ना होता। और दूसरी बात यह कहते हैं कि एक दफा बचपन में छोटा था, दोस्तों में खेला तो मैंने गाली दी थी, जैसे बच्चे दे देते, कोई ऐसी दी होगी जो बच्चे देते हैं, तो उस दिन मेरी माँ ने मुझे ये सबक दिया था कि तुमने गाली नहीं देनी, और उन्होंने मुझे वॉच आउट किया कि इसके बाद मैं अपने आप को फिर कभी इस चीज के काबिल ही नहीं समझा कि मैं ऐसे काम करूं। तो यही हुआ, हकीकत है ये चीजें पत्थर में लकीर की तरह, हम सब अपनी माँ बाप की कोशिशों का नतीजा है। आप सबने भी देखा होगा कि पहले दौर में क्या कहते थे कि बच्चे को खिलाओ दामादों की तरह और देखो शेरों की तरह, फिर सुना मैं कुछ ऐसी कहावतें बनी हुई है, यानी बाप की निगाह से बच्चा सीधा हो जाता था, आज क्यों नहीं होता? सिर्फ माँ आंख का इशारा दिखाती थी तो बच्चे यूं सीधे हो जाते थे कि थर थर कांपते थे। आज के बच्चे माँ से तो छोड़े बाप से भी नहीं डरते, है कि नहीं? वजह क्या है कि हमने इनकी तरबियत का हक अदा नहीं किया। मानिए, समझिए, और हम सब इस पर अल्लाह से माफी मांगे। याद रखिए बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक चरवाहा है, शेफर्ड है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। वह कुल्लु को मसूल उन रईयती ही, और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा। आप कभी कभी अपने आप को मैदान मक्षर में खड़ा करके सोचा करें, मैं खड़ी हूं, चले अल्लाह ने पहले मेरा बोर्डिंग पास देखा, मेरे पेपर चेक किए, अच्छा ठीक है, वीजा है कि नहीं, पासपोर्ट क्लियर है, टिकट ठीक है, आप क्या आप जा सकती हैं? नहीं। कहाँ हैं आपके साथ सिबलिंग्स और फला फला? अब आपके एक बच्चे का पासपोर्ट, फिर दूसरे का, तीस, मैं और आप कयामत के मैदान से हिल नहीं सकते जब तक अपनी औलाद के मामले क्लियर न करवा सके। इस तरह वहां खड़े होंगे। शौहरों की बात अलग है, ठीक है, हमारा उनका हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन जो हमसे पूछा जाएगा ना, वो हमारे बच्चों का पूछा जाएगा। और इस जिम्मेदारी को जब आप एहसास महसूस करेंगे ना, आप अपने कंधों पे इतना बोझ महसूस करेंगे, आपका अपना वक्त जाया करने को दिल नहीं करेगा। शॉपिंग में, गॉसिप में, पार्टीज में, दातों में, इधर उधर आप कहेंगे नहीं, मेरी एक जिम्मेदारी घर में है जो मुझे निभानी है। दुनिया में हर मामले में जैसे हम अपने बच्चों को साथ साथ रखते हैं ना, इसी तरह क़यामत के दिन के मामले को रखे देखे, और इस जिम्मेदारी में को अदा कैसे करना। अभी जिम्मेदारी का अगला स्टेप कि मैं अपने दिल से जिसको सोचती हूँ, इस वक्त हम उम्र के मुख्तलिफ मराहिल को भी जेहन में रख सकते हैं और अहमियत को भी समझते हैं। सबसे पहली चीज को प्यार दे। तरबियत का सबसे पहला गुण मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत फातहे आलम। दिल की गहराइयों से बच्चे को प्यार दे। प्यार का मतलब मेरे दिल में इस वक्त जो ना लम्स है, छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं अमूमन, लेकिन जब वो मिसाने लगते हैं तो हम फिर उनके साथ। और बाज ना समझ माए गोद के बच्चों को मार रही होती है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, माँ उसको मार रही है, तो फिर बढ़ने वाले की तो वाकई जरूरत थी ना, कि एक ना समझ बच्चे को माँ मारती है तो ले जाएंगे ना, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ा लेती हैं दूसरे कामों में, सारा जोर अपने बच्चे से भी प्यार है। लेकिन उसको फिर आप एक और चीज अपने साथ लिखिए कि अपने बच्चे को इंसान का बच्चा समझे। बस दफा हम लोग अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन समझते हैं, जो आपकी नीड्स है ना वो आपके बच्चे की भी नीड्स है, लेकिन इस मोहब्बत में बिगाड़ना नहीं है। अल्लाह भी प्यार करता बंदों से। मैं इस मोहब्बत को कैसे कहती हूँ आपको, कि आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लें। यानी शादी के बाद, बच्चा होने के बाद या बच्चे की उम्मीद के बाद, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो या आपकी कोई बेहतरीन सहेली हो तो वो आपका बेटा या आपकी बेटी हो। माँ बच्चे का ताल्लुक बेस्ट फ्रेंड का ताल्लुक होना चाहिए, जिसमें क्लोजनेस भी होती है, दुख सुख भी होते हैं, जिसमें दूसरे के दर्द को समझना भी होता है, और जिसमें साथ रहने को दिल भी करता है। बस आपने देखा होगा कि ये सब कुछ भी करते हैं ना, लेकिन बच्चे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। माएं सारी अपनी सहेलियों में, बच्चे दोस्तों में, ऐसा इफेक्शन का ताल्लुक, इतनी मोहब्बत हो कि बच्चे को लगे कि मुझे तो सबसे ज्यादा अपनी माँ से मजा। मैं कमरे में अकेले नहीं बैठूंगा, मैं अपनी माँ के साथ बैठूंगी। आज आप देखिए कि इतनी हमारे अंदर जुदाइयां आती जा रही हैं। घर बड़े हो गए तो अपने घर के बच्चे नहीं दिखते आपको, वो एक कमरे में खुश है, मैं वो एक में, और ये जो छोटी छोटी मशीनें हमने रख दी है ना उनके हाथों में, सच्ची बात है, इन्होंने उनको माओं की मोहब्बत से दूर कर दिया। कहते हैं ना कि एहसास से मरव्वत को कुचल देते हैं आलात, ये 100% सच है। मैंने एक घर में रहते हुए बच्चों को माओ से फोन पे बात करते देखा, बुलाना है तो फोन पे, आना है तो फोन पे, आ रहा हूँ तो नहीं, जा रहा हूँ नहीं, इंटरकॉम थे कभी तो इंटरकॉम पे और अब फोन पे। ये घर है, माँ का अपने दुख है, वो अपनी जिंदगी में, माँ परेशान है, बाप अलग है, कोई फिक्र नहीं बच्चों को। यह भी देखे कि एक घर में बच्चों की जो पोजीशन है ना, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि शेयरिंग होम, क्योंकि वो अपने कमरों में, माँ और बाप जो खाने, क्या होता है कि खाना पकाया, खाना खा लो, एक आवाज लगाई, बच्चों के कमरे ऊपर है, माँ बाप के नीचे है, वो खुद ही सर पे भी चढ़ा लिया उनको, खैर वो कहती हैं आवाज लगाए कोई नहीं आता। फिर मियाँ के साथ बैठ के मैं खाना खाती हूँ जो रोटी सालन बनाया था। फिर कहती है मैं समेट समाट के जूं ही कमरे में जाती हूँ ना, तो मुझे फिर बाहर से ना सिर्फ दबे 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 आवाजों की, कदमों की आवाज आती है सीढ़ियों से। फिर ये मेरी बेटियां उतरती हैं, वो उनकी अपनी दुनिया। फिर कोई अंडा टोस्ट बना रही है, तो कोई नूडल चीज बना रही है, फिर कहती है बना के ट्रे बना के ऊपर ले जाती है। फिर वो रात को पता नहीं कब खाती हैं, कब बैठती हैं, और हमें सुबह पता चलता है कि ये आई थी उतर के खा गई। बिलीफ ये घर के अंदर रहते हुए ऐसी कैफियत है कि ज्यादा से ज्यादा आपने कोई किराएदार रखा हुआ कि पहले आप किचन यूज कर लें तो फिर वो कर ले। ना आपके खाने मिलते हैं अपने बच्चों से, सोचिए, ना आपका पहनना ओढ़ना मिलता है। आप शादी में जा रहे हैं, बच्चे कहते वी डोंट वांट टू गो। क्यों जी? बस मुझे काम है। वो काम क्या, आप जाए फिर पता चलेगा। कंप्यूटर ने शौक डाल दिया माँ बाप को, यदि बच्चे बहुत पढ़ते हैं। बच्चों की अपनी सरगर्मी है। क्या ऐसा नहीं है कि हर आप में से इस सोसाइटी में देखिए कि कितने लोग हैं जो 100% कहें कि हमारे बच्चे हमारे कहने पे चलते हैं। वो नहीं जाना चाहते दावत में, नहीं जाएंगे, चाहे फैमिली की दावत थी। आपको कहीं जाना है, वो कहते नहीं आप जाए, हम आपको नहीं रोकते, हम नहीं जाते। ये बहुत बड़ी खराबी की अलामतें होती हैं। इफेक्शन, मोहब्बत, प्यार, आप बैठे बच्चे आपकी गोद में आके बैठे, और खास तौर पे प्यार करें बड़े होते हुए बच्चों को, ग्रोइंग बच्चे 8, 10, 11, 12 की जो उम्र है, गले में बाहें डालें अपने बच्चों के। वो बेटा जवान हो गया 16 साल का, आपका तो बेबी है, उसको प्यार करें आप, उसको उसके बालों में हाथ फेरें आप, उसके कमर पे हाथ फेरें, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू, जो कहते थे बचपन में उसको कहें, करके देखे। ये चीजें जब माँ से मिल जाती हैं, घर में मिलती हैं, तो बाहर क्या करनी है लेके। अब मैं यानी अफसोस के साथ ही कहूंगी कि हम तो ये सारे मामले बाज दफा अपने जायज रिश्तों में करते ही नहीं है। शोहरों के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं होता मोहब्बत का, और उनके साथ जरा बेतकल्फी का, तो दूसरों के साथ कहाँ होगा। एक ऐसी सेट जिंदगी हमारी यहाँ चल रही है, बहुत इत्तफाक होता है लोगों को देखने का भी, और फी जमाना लोग जब सवाल करते हैं उसी से मसाइल पता चल जाते हैं। बहुत नपी तुली जिंदगी है। डांट का है बच्चे के साथ ताल्लुक बहुत, चीखने का है। बच्चे कहते हैं अब अम्मी की टेप चल पड़ी, देखना अब ये चीखेंगी, अब ये अम्मी शुरू हो गई ना, अब अम्मी नहीं चुप रहेंगी। पांच दफा आप मोहब्बत में कर रहे होते हैं, बच्चे जान छुड़ाते हैं कि एक दफा अम्मी चुप करके सोएंगी ना, फिर उठूंगी नमाज के लिए, क्योंकि ये बहुत मुझे सुबह उठते ही जिज करती है। ये ठीक तरीका नहीं है। एक और टिप लिखी, रवैया इख्तियार करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। हम सोचते हैं शायद इससे मुराद कपड़े और चीजें हैं कि जो जोड़ा आपको पसंद है वही दूसरे को दे। नहीं, रवैये। आप ये पसंद करती हैं कि आपकी दोस्तों में कोई आपको बुरा कहे? आप पसंद करती हैं कि कोई खड़े खड़े आपको हुक्म दे दे? जो आप नहीं पसंद करती ना, आपके बच्चे भी नहीं पसंद करते, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो इंसान के बच्चे हैं, वो यंग है। तो अपने बच्चों को अपने पे। फिर एक और चीज याद रखें कि अपने बच्चों से डील करते वक्त आप अपनी उस उम्र की डिमांड्स जो थी और जो उस उम्र के आपके तकाते थे ना, उसको ना भूलें। मतलब आप इस वक्त माशाल्लाह 40s में है, आपकी बच्ची या बच्चा टीनेजर है, अब आप उसको हर वक्त अपने ऊपर लेके सोचती रहे। मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं। आप सोचे जब मैं अर्ली टीनेजर में थी, टीनेजर में थी, उस वक्त मेरी क्या तमन्ना थी। बस जब आपको कोई माँ बाप की बात बुरी लगती है, आज भी याद होगी, उसको लिख के रख ले, अगर मुझे बुरी लगती थी ना तो मेरे औलाद को भी ये बुरी लगेगी। अगर आप बच्चे के साथ इस तरह का ताल्लुक रखे कि रोज स्कूल से आ रहे हैं ना, बैठे, अच्छा बच्चे आज क्या हुआ, बातों ही बातों में सब सुन ले और सुनाए। जो बच्चे अपने माँ बाप से क्लोज होते हैं ना, बाहर वाले उनको जितना मर्जी खराब करें, वो बच्चे घर में आके बात करते हैं। और आपको पता है कि आज जिस गंदगी के तूफान में हम जी रहे हैं, ये चंद दिन में मुझे लोगों ने शेयरिंग दी, आज उनमें से वो सिस्टर है नहीं है, उन्होंने कहा था कि आप खुद आके सुना दें, तो फर्स्ट हैंड ही बात मुझे अच्छी लगती है कि जिसमें मैंने अपने कानों से सुना, तो मैं यकीन नहीं कर सकी कि बारने हागे के बच्चे, यानी एक डे केयर में जो बच्चा भी स्कूल गोइंग नहीं है, अब इस सोसाइटी में उसको सेक्स की बातें बता रहे हैं। और उस सिस्टर ने मुझे बताया कि हम भी इसी मुल्क में पढ़े हुए हैं, ये बातें उस्ताजा हमें 6th और 7th ग्रेड में बताई थी, जो आज कहती मेरा बच्चा बाद में आगे से आके कहता है अम्मी ये सच है, और वो बातें मैं मुंह पे नहीं ला सकती। किस तरह हमारे बच्चों को बड़ा किया जा रहा है उम्र से पहले, क्या गंध उनको क्लासों में ला के दिखा के तरीके सिखाते हैं, मुझे हया आती है यहां बताते हुए। मैंने कहा इसकी जरूरत क्या है? कहते नहीं, वो कहते हैं कि बच्चे सिक्योर फील करे, कभी कोई उनको अब्यूज करे तो उनको पता हो ये अब्यूजन है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये यहां की बात है। और मैं इंशाल्लाह किसी दिन अगर वो इधर होंगे तो मैंने कहूंगी आपको खुद बताएं। अब अगर वो बच्चे से बात ना करें, घर में आके बच्चे ना पूछे, आपको कैसे पता चले? फर्ज बनता है आपका माओ का कि अपने बच्चों की दिल की बातें सुने, दोस्त बन के चलो बेटे क्या हुआ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ क्या हुआ बच्चे। अच्छा फिर बातों बात तुम उसको, और जब वो कभी ऐसी बात सुना है ना एकदम, और अगले दिन आपको नहीं बताएगा, उस वक्त खामोश रहे। ऑफकोर्स बर्दाश्त करना बहुत भी मुश्किल होगा, कई ऐसी अनयूजुअल बातें हैं कि बिलीव मी मैं सोचती हूँ कि बंदा अपने बच्चे को अनपढ़ जाहिल रख ले, लेकिन इस तागूती निजाम के अंदर ना डाले, लेकिन गैर महसूस तरीके से आते हैं। तो गिंदगी कितनी है, लेकिन आपने उसका मुकाबला किस चीज से करना है कि आपने अपने बच्चों को खुद अपने करीब करना। फिर उसके बाद आप देखिए कि बच्चे की जो उम्र तकरीबन 4, 5, 6 साल जहां से शौर शुरू होता है, बहुत छोटा बच्चा ना 2 साल के अंदर रोक टोक ना करें, उस बच्चे की जड़ों में प्यार डाल दें। सुबह उठे तो स्माइल, उस बच्चे को पता है कि सुबह उठ के स्माइल है। हमारे बच्चे रोते उठते कहते नहीं ये सोया उठा ना इसलिए रो रहा है, तो क्या मतलब है? आप अब सारी जिंदगी उठेंगे तो रोएंगे? इसीलिए आप देखिए बड़े होने के बावजूद भी कई मर्दों का बड़ों का सुबह उठ के मूड ही नहीं ठीक होता, क्योंकि बचपन में माँ ने जो उठते कह दिया ये भी सोया उठा ना इसलिए रो रहा है। आप अपने गोद के बच्चे को उठाए ना तो स्माइल पास करें। क्या कहते हैं स्मीले? स्माइल क्या कहते हैं? स्मीले। अब आप एक बच्चे को उठते स्माइल देंगे तो एक दिन वो रोएगा, दूसरे तीसरे दिन कहेगा इसका अंदर के सुबह उठ के हंसना चाहिए, हंसाए स्माइल करें। कभी अपने बच्चों को इस तरह के आप बेनिफिट्स ना दें कि नहीं इसको भूख लगी है ना इसलिए रो रहा है, और इसको प्यास लगी है तो ये इसका मूड खराब है और इसकी नींद नहीं पूरी। हमने हर उम्र के एक अजीब से लॉजिक बना ली, ये क्यों? ये छोटा है इसलिए रो रहा है, ये जवान हो रहा है इसलिए जवान खून है, ये मर्दोगे भाई कैसी जवानी झूम के आई कि आप किसी के काबू में नहीं है, ना बचपन में काबू में नहीं है। माँ इतनी समझदार होनी चाहिए कि उसको अपने बच्चे कि अंदर एक अगर जज्बा भी उभरा ना तो उसका रंग उसको चेहरे पे दिखे। कभी अपने बच्चों को तन्हा ना छोड़े, स्कूलों में कॉलेजों में, इस कॉलेज की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों को आप जितना फितरत पे रखें, और एक चीज जिसको मैं बहुत महसूस करती हूँ सारी जिंदगी इसका असर रहता है, वो है ईटिंग हैबिट्स। मैं सोचती हूँ कि माओ का ये रोल इतना अहम है। मसलन कैसे? आप देखिए कि आप इस्लामिक रूल्स खोल लीजिए खाने पीने के, पसंदीदा अखलाक क्या थे कि बैठ के खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बैठने से खाने से पहले हाथ धो, अपने आगे का खाओ और प्लेट के बीच में एंड पे खाओ, और खाने के दौरान बात ना करो, खाने की तरफ देखो। ये चंद बातें मैंने बोली ना। क्या आप अपने नर्सिंग किट यानी जब दूध पी रहा बच्चा, आप उस बच्चे को ये नहीं सिखा सकते? बस आप देखिए कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं ना, आप सोच लें वो सारी ईटिंग हैबिट्स मैंने इसको सिखानी है, कैसे कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आप बच्चा देखे ना देखे आप अपने हाथ धो लें, बच्चे को दूध दे रहे ना बिस्मिल्लाह करके दें, अगर घूंट 3 सिखाने ना एक दफा निपल डालें उसके मुंह में, उसको सक किए फिर छोड़ दें, फीडर छोड़ लें जो भी पिलाते हैं, फिर दोबारा 3 दफा ऐसे करके फिर उसको फीडर दें, उसको सबर आ जाएगा कि एक घूंट के बाद माँ फीडर क्यों निकालती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि 3 घूंट में पियो फिर दूसरा भी। फिर आपको जरा सी फीलिंग आए ना कि बच्चे का पेट भरा है फौरन छोड़ दें, क्योंकि हदीस में आता है कि पेट में खाली जगह रखो। फिर कोशिश करें कि जब बच्चे को दूध पिला रही है तो आप खुद ना बोलें, वो कहेगा एक दिन सोचेगा दूसरे दिन कि आखिर माँ क्यों नहीं बोलती, तो आपने उसको सिखा लिया कि खाते और पीते हुए बोलते नहीं है। जो ही बच्चे का दूध छुड़वाएं फारेगा तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा भी सीख लेगा कि खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। फिर उसके बाद हमारे कल्चर में तो वो डिकार जो दिलवाते हैं वो तो इसलिए दिलवाया था ना कि एक्स्ट्रा दूध डाला है वो निकाल ही ले अभी तो चाहे, हम तो आखिरी दम तक उसको दूध पिलाते ही रहते हैं ताकि उसके कतरा भी अंदर जाए। लेकिन आप सिखाते ना कि खाना खाते ही लेटना नहीं है, तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाए उसके बाद फौरन लिटाए नहीं, उसके ऐसे खड़ा रखें थोड़ा, उसको गुदगुदाए कि उसको गैर महसूस तरीके से ये ईटिंग हैबिट सिखा दें कि मैंने खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि बच्चे जरा से बड़े होने लगते हैं, बातें शुरू कर देते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। अब इस उम्र में लिबास पहनने की बात आ जाती है, बच्चे को आप कपड़े पहनाती हैं ना, सब माएं पहनाती हैं बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, वो सारी हैबिट्स दिन में ले आए, جو سنت کے مطابق ہے, کپڑے پہنانے کی, دائیں ہاتھ سے شروع کرنا, دعا پڑھ کے شروع کرنا, پورا بچے کو برہنہ نہیں کرنا, ایک کپڑا اترا ہے تو دوسرا پہنا دیا گیا, یہ ساری اس وقت سوچے اور اپنے لفظوں میں جیسے بچے کو فیل کرائیں کہ چلو جی پہلے کون سا بازو پہنتے ہیں, رائٹ پہنتے ہیں, پھر کون سا پہنتے ہیں, پھر لیفٹ پہنتے ہیں. آپ یقین کریں کہ چھوٹے بچے اتنی جلدی سیکھتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. میں نے خود ایک آدھ بچے کے ساتھ اس طرح کا ایکسپیرینس کیا تو وہ بچے پھر اس چیز کو بعد میں یاد رکھتے ہیں. چلے جی آپ نے کھلانے کی باتیں سکھا دی الحمدللہ, کپڑے پہنانے کی بھی سکھا دی ماشاءاللہ, دو باتیں ہو گئی. تیسری چیز چلیے بولنے کا سٹائل, بچپن میں سیٹ ہوتا ہے یہ معاملہ. اب آپ دیکھیے بچپن میں عموماً چھوٹے بچے بلا وجہ ہی روتے ہیں. اب آپ اس بچے کو جتنی مرضی کہانیاں ہیں وہ روئے گا. چھوٹے بچے کے سامنے نہ کرینکی فیسز بنائیں, کرینکی کیا ہوتے ہیں, وہی جو میاں کے آنے پہ بناتے ہیں یا سسرال کے آنے پہ بناتے ہیں. کیا کہیں گے کرینکی کو نوش میں, کوئی کسی کو پتا, اردو میں بتا دیں. یہ جو کہہ رہی ہیں وہی, کیونکہ مجھے تو کہنا نہیں آئے گا. آوازار چہرے نہ بنائے, پنجابی میں ترجمہ اس کا اچھا ہے میرا حال ہے, کرینکی کہتے ہیں آوازار کو. کبھی آپ سوچیں کہ ماں کیوں نہیں خوش رہتی, الجھی کھلجی روئی بال بکھرے, کوئی کہتا مجھے تو کنگھی کرنے کی فرصت نہیں ملتی. بڑا حوصلہ آپ کے میاں جی کا جو آپ کو روز ایسے حالت میں دیکھتے ہیں, اور بڑا ہی حوصلہ جو آپ کے بچوں کا جو آپ ایسی ماں کو دیکھتے ہیں جس کی زلفیں بکھری رہتی ہیں. خود کو ریلیکس رکھے. دیکھیے اگر آپ کو پتا نا کہ یہ بچہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ ہے اصل آپ کی سارے دن کی کمائی, تو اس کو فوکس کریں. جو کام اس کے بعد ہوتے ہیں کر لیں, نہیں ہوتے تو چھوڑ دیں. نہ بنائیں چٹنی, نہ بنائیں سلاد, آپ نہ روز بیڈ شیٹ چینج کریں, آپ نہ روز لانڈری کریں. اپنے بچے اور اپنے گھر والوں, اس میں شوہر بھی میں لا نہیں رہی کیونکہ پھر آپ کا مزاج بدل جاتا ہے, تو میں ان بیچاروں کو اس کورس سے باہر ہی نکال دوں تو بہتر ہے. لیکن آپ خوش رہیں, ماں کا خوش رہنا بچے کے اوپر اتنا اثر ڈالتا ہے. پریگنینسی میں ڈاکٹرز کہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں کو خوش رکھو, اس کو ڈپریس نہ کرو, بچہ بھی سنتا ہے بچہ بھی سیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم الگ سے کر چکے ہیں الحمدللہ پچھلے حصوں میں, لیکن یہاں ہم جنرل ٹپس لے رہے ہیں. آپ خوش رہیں, آپ سیکھیں جو میں کروں گی نا میرا بچہ مجھ سے سیکھے گا. آپ کا جو سوشل بیہیویئر ہے گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ, بچہ سیکھ رہا ہے. آپ کتنے بجے سو کے اٹھتی ہیں, بچہ سیکھ رہا ہے. آپ صبح اٹھتی ناشتہ نہیں کرتی, بھوکی رہتی ہیں بارہ ایک بجے تک, آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے مانے نہ مانے. آپ اٹھتے ہی صبح شاور لیتی ہیں کہ نہیں لیتی, بچہ سیکھ رہا ہے. آپ صبح اٹھتے چاہے خبریں دیکھنے یا موسم دیکھنے کے بہانے ٹی وی کا ریموٹ پکڑتی ہیں, بچہ سیکھ رہا ہے. دو معصوم سی آنکھیں لگ جاتی ہیں آپ کے اوپر جب آپ بچے کو پیدا کرتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو میں نے اپنی زندگی بسر کرنی تھی کر لی, آزادی کے دن گئے, اب جو کروں گی یہ ملٹی پلائی ہوگا. دیکھیں نا کہ جیسے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وہ خود کر رہا ہے, اصلاح کر لے گا تو ٹھیک ہے یا مر جائے گا تو ختم. لیکن آپ اپنے اوپر لیں, آپ کی غلط عادتیں آپ کے بچوں میں چلی گئیں, آپ کے جانے کے بعد ان کے اندر ایسی پکی, وہ کہیں گے ہم نے اپنی ماں کو شروع سے یہی دیکھا, وہ ان کے بعد کہاں تک اس کا اثر جائے گا, غلط جگہ جائے گا نا. اس لیے خوش رہیں. آپ کی زندگی کے غم کب تک رہیں گے, آپ پریشان ہیں کب تک رہیں گی, آپ کے شوہر سے آپ کی نہیں بنتی, آپ کے بچے کا کیا قصور. یعنی آپ اپنے بچے کو خوش رہنا سکھائیں. اور یہ وہ باتیں جو ہم لوگ کہتے ہیں چھوڑو ہمارے پاس خوش رہنے کا ٹائم نہیں ہے, بہت بزی بہت مضبوط, میں خوش رہوں اس حالات میں, توبہ توبہ. تو پھر آپ اپنے بچے کو رضیت باللہ ربن کیسے سکھائیں گی, تقدیر پہ راضی رہنا کیسے سکھائیں گی, شکر کیسے سکھائیں گی. بچے کو جتنا شکر گزار ماں بنا سکتی ہے نا, میرا نہیں خیال اگلی ساری زندگی میں ملا کر اتنے لوگ جو میں ملتے ہیں وہ شکر گزار بنے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے کو شکریہ سکھائیں. ہر کس کا شکر, اللہ کا شکر. بیٹا تھینک یو اللہ, اللہ نے آپ کو دودھ دی, اللہ کا شکر. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جملے تو دیکھیں, کیا جملے بولتے ہیں, ماما نے دیا, بابا لے کر آئے, نانو نے بھیجا, یہ سب جملے لکھ کے دیکھیں. یہ کسی نہ کسی حد تک شرک کی بوتی ہے. اس میں ماما دے سکتی ہیں, بابا دے سکتے ہیں, نانو دے سکتی ہیں. کس نے ماما پاپا نانو دادو کے دل میں ڈالا, الحمدللہ رب العالمین. اپنے جملے چینج کریں, اللہ نے دل میں ڈالا تجربہ، اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے یہ دیا۔ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو گائے کی ساری کہانی سنا دیں، سورہ فرقان، سورہ نحل میں جہاں دودھ کا ذکر ہے نا، یہ آپ بچے کو 2 سال کی مدت میں سکھا دیں۔ دودھ پلا، بیٹا دودھ کیسے بنا، کالی بھینس میں وائٹ دودھ کس نے ڈالا، دودھ میں مٹھاس کس نے ڈالی، خون کا رنگ کس نے نہیں ڈالنے دیا، چلو ساری باتوں میں اس کو سکھا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں سے جو اثر آئے گا نا آپ کے اندر، وہ ایسے لگے گا کہ بس بچے کی طبیعت کا حصہ بن گیا۔ کبھی بچے کو اچھا دیں تو کبھی برا دیں۔ چھوٹے بچے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، اب اگر ہم 3-4 سال کے بچوں پہ آ جاتے ہیں جو چیزیں فیل بھی کرنے لگتے ہیں، ہر وقت ہر چیز نہیں دینی۔ میرا بچہ ہے، میں جانتی ہوں، بچہ بسکٹ مانگے بسکٹ پکڑا دیا، بچہ چپس مانگتا ہے چپس پکڑاتی ہیں، اس کے بعد جوس مانگتا ہے جوس دیتی ہیں، پھر وہ واش روم میں جانا چاہتا ہے اس کو پیمپر چینج کرتی ہیں، وہ چینج کر کے واپس آتی ہے، اتنے میں وہ کسی بچے کے ہاتھ میں بسکٹ دیکھ لیتا ہے، بسکٹ دے دیتی ہیں، چائے پیتے ہوئے چائے مانگتا ہے چائے دیتی ہیں۔ یہ ڈرام ہے، یہ کوئی ٹریش کین ہے جس میں جو چائے ڈالتے جائیں؟ آپ اپنے بچے کے کھانے کے ٹائم رکھیں۔ میں نے ایک نیو بورن بیبی کو دیکھنے گئی ایک دن، تو بچی تھی اس کے بچہ ہوا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیا، میں نے کہا تم اس کو ابھی سے سیٹ کرو، وہ رونے لگا نا تو یہ رو رہا ہے، میں اس کو دودھ پلا، میں نے کہا ذرا صبر کرو، چین لو، کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو 2-3 چلو 1 منٹ رونے دو۔ ہائے روئے، میں نے کہا رونے دو کیا، تھوڑا سا روئے گا بلکہ اچھا جسم میں پہلا دودھ نکل جائے گا۔ بچے کے روتے ہی جو مائیں منہ میں دودھ ڈال دیتی ہیں نا، یہ بچے کو بے صبرا بناتی ہیں۔ کم از کم 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ بچے کو، پہلے اس کو چپ کرائیں، کبھی اس کو روتے کے منہ میں دودھ نہ ڈالیں، کو پہلے چپ کرو پھر پلاؤں گی۔ اور اس کو بول کے تو شروع میں نہیں سکھا سکتی نا، تو چپ کرے گا نا، ذرا سیدھا کرے، ریلیکس ہو، جب وہ خاموش ہو گیا آپ اس کے منہ میں دودھ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے کھانے کے وقت مقرر کریں۔ آج تو اتنی گائیڈ لائن موجود ہے کس عمر میں کیا چاہیے کتنا چاہیے، لیکن اپنے اوپر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ صبح ناشتہ کر کے آئے یہاں 9 بجے بھی اگر آپ نے ناشتہ کیا، تو آپ کو تقریباً 11-12 بجے کے قریب لگا کہ ریلیکس ہے، ناشتہ جیسا کیا تو اتنی ہلکی سی بھوک آ گئی، ٹھیک کھانا کھایا ہو تو 6-7 گھنٹے بھوک ہی نہیں لگتی، ایسی ہے نا۔ آپ اپنے چھوٹے بچے سے امیجن کریں، ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں، ایسے پتا چلے میں کوئی غلط بتا دوں اور بعد میں سارے میرے اوپر ہی پڑ جائیں، لیکن بچے کی بھوک کا اندازہ لگائیں۔ ابھی دودھ دیا نا اس کو، جیسے مثال ہے کہ صبح اٹھ کے بچے کو آپ نے 6 بجے دودھ دیا، اب 6 بجے دودھ دیا، اب میں نے اس کو 9 بجے سے پہلے کچھ نہیں دینا، 3 گھنٹے میں یہ دودھ ہضم ہو جائے، بھوک لگے، اس کو ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ دودھ دیتی ہیں، یعنی اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں دینا۔ اب دودھ کی والی بات کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں، بلکہ اس کو سائڈ پہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی ماؤں کے لیے سبق ہے کہ جب بچے کو آپ دودھ دیتے ہیں نا، اس کے فوراً بعد اس کو حاجت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو یورینیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو یورینیٹ کروائیں اور اس کے فوراً بعد دودھ پلائیں، کبھی آپ کا بچہ پیمپر میں چھچی نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہے جو چھیڑنے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب اپنے بچوں کو ہر وقت پیمپر کیے رکھتے ہیں نا، ان کی تو مت ہی مار دی، اچھے برے کا فرق نہیں ختم کیا، بلکہ نہ سمجھ میں آئے گی کر لو، اس میں جو کرنا کر لو، بعد میں صاف کروں گی۔ بچے اشاروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے واش روم میں جانا ہے، اور مائیں کہتی ہیں فارغ ہو جاؤ، ایک ہی دفعہ پیمپر چینج کروں گی۔ آپ نے ان کو طہارت کہاں سکھائی؟ وہ اپنے ساتھ پوٹلے لے لے کے 4-6 گھنٹے پھرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مہنگے بہت ہیں پیمپر۔ اگر بچے کی ایٹنگ ہیبٹ صحیح کر لیں گے نا، یقین کریں پیمپر صرف تب باندھیں گے جب کوئی ایمرجنسی ہوگی، اور صرف ٹائم بھی، اور بچہ بھی نہیں خوش ہوگا۔ پہلے دور میں کہاں تھے پیمپرز؟ بچھونیوں پہ لوگ سوتے تھے، بچے سوتے، جو بھی اس کہانی کو نہ بھی چھیڑے، اگر بچہ ہر وقت کھائے گا نا تو ہر وقت لیک ہوگا۔ یہ ایک سمپل سا رول سمجھ لیں۔ گھر میں اگر اور لوگ بھی رہتے ہیں نا، تو ان سب کے ساتھ پیار سے محبت سے بیٹھ کے بات کریں کہ آپ لوگ اس کو ہر وقت نہ کھلائیں۔ بعض گھروں میں چچا بیٹھا تو بچہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، پھپھو بیٹھی بچہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، ادھر سے ماں بیٹھی، دادا بیٹھا، سارا دن اس کے منہ میں روٹیاں ہی ڈالتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی بھاری پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ دیکھیں میں اس کو سیٹل ڈاؤن کر رہی ہوں، تو آپ اس کو ہر وقت نہیں کھلائیں، میں نے اس کا وقت رکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر آپ کو شوق ہے اس کو کھلانے کا، جب اس کے کھانے کا وقت ہوگا نا، پھر آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو دے دوں گی، آپ کھلا لیں، اچھی بات ہے، کھلوایا کریں۔ بچے جس کے ہاتھ سے کھاتے نا، وہ اس کے لیے پھر جھکتے ہیں، ان کو اچھا لگے گا کہ اگر نانی نے کھلایا تو نانی کے آگے بھی جھکے اور دوسروں کے بھی۔ لیکن ٹائم سیٹ کریں، جس وقت کھانا ہے بچے نے کھڑے ہو کے نہیں کھانا، ہاتھ دھلائیں بچے کے، اس کو اس کی سیٹ پہ بٹھائیں۔ اب لگا لے وہ بچے ہیں جو تھوڑا کھاتے ہیں نا، 3-4 سال کے، خود ان کی بیلنس ڈائٹ رکھیں۔ اگر آپ ان کو دودھ دے رہے ہیں तो ऑफकोर्स आपको जूस नहीं देना चाहिए। अगर फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स दे रहे हैं, तो उसके साथ आप उनको दूध ना दें। जो चीजें आपस में मैच नहीं करती, सिट्रिक है, मिसाल है कि जैसे ऑरेंज है, लेमन है, या ग्रेप फ्रूट है, या कोई ऐसी चीज है जो एसिडिटी डालती है, तो आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए। इतना आसान है आज यहाँ, तो इतना आसान है हमारे, क्योंकि अकेले रहते हैं लोग अमूमन और कोई इतना इंटरफेयर नहीं करता। आप बच्चे को हमेशा नेचुरल चीजें खिलाएं, घर की बनी हुई, अपने हाथ की बनी हुई। ये जो हम कई कई दिन पुराने एक्सपायरी डेट्स पढ़ पढ़ के देखते हैं कि ये खाना देना है, आपको भी सोचे तो सही, वो बच्चों के इतने इतने खाने होते हैं, पैसे कितने उसमें, और उसमें एक भर के बड़ी टी टेबल स्पून नहीं निकलता खाना, कब का बना, क्या मेरा बच्चा ये खाएगा। फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें पता नहीं क्या कुछ डाला होगा, उसको खूबसूरत करने के लिए उसमें रंग डालेंगे, हम बड़े खुश होते हैं ये बहुत एनरिच्ड है, इसमें प्रोटीन एडेड और पता नहीं कार्बोनेटेड एडेड, सब खत्म। प्यार गूंद के बच्चे को खिला सकते हैं, थोड़ा सा आटा गूंद उसमें अंडा डाल लेते हैं आप, थोड़ा बटर डाल लेते हैं आप, उसमें अपनी मर्जी के फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बनाएं, शुरू से बच्चे को उसकी आदत डालें। और जरा से बड़ा हो गया, जैसे नॉर्मल बच्चे घर में खाना खाने के, कभी उसके लिए अलग कुछ ना पकाएं, सारी उम्र ही पकाना पड़ेगा, जो आप पका रहे हैं वही खाए। पहले भी ऐसे ही होता था, पकती हुई अंडिया में से आलू निकाल के उसको ऐसे मैश करते थे रोटी के साथ या चावलों के साथ। चावलों के ऊपर अक्सर देखा आपने भी, थोड़ा सा बटर डाला, चीनी डाली, मीठे चावल खिला दिए। वो बच्चे ज्यादा ताबेदार थे कि आज खैर से इतने इत्तमाम वाले बच्चे। हमारा खर्चा कितना बढ़ गया, हमारा ट्रैश कितना बढ़ गया, और हमारी एफर्ट कितनी बढ़ गई। इतने से बच्चे का भी माँ कहती है मैं इसका खाना बनाने लगी हूँ, वो चाहे नूडल ही बनानी है कुछ भी, उतने बर्तन भी भरने हैं, फिर उतने उसकी चीजें, क्या जरूरत है। इन बच्चों को ज्यादा ना देखा करे, बस बोले भा अल्लाह के तोहफे, अल्लाह की मानते हैं, ये खुद ही पल जाएंगे। लेकिन आप इनकी हैबिट्स क्रिएट करें, आप इनको बिठाएं कि खाएं, थोड़ा सा खिलाएं फिर के खुद खाओ, उनको थोड़ा सा गिराएंगे ना फिर उनसे साफ करें। और कभी उसके बाद जब एक दफा एक बच्चा एनरिच्ड फूड ले चुके, अगले फूड के उसके मील टाइम से पहले बीच में उसको कुछ न दें सिवाय पानी के, आपको पैंपर्स की जरूरत ही नहीं। जब बैठा खाने खाएगा उसे अगर बहुत साफ करें उसको और खत्म, और आप देखेंगे कि कई मसले हल होते हैं। इतना बुरा लगता है जो बच्चे हर वक्त चलते फिरते खाते हैं, सारे घरों में स्मेल होती है खाने की, बिस्किट के चूरे पड़े होते हैं, चिप्स खुले हुए पड़े हुए। आप देखिए कि आज ये जंक तो कभी लाई ना अपने बच्चों के लिए घरों में, ये तो है कभी बहलाने की बातें। फिर चूसनी याद आ गई मुझे, चूसनी क्यों डालते हैं कि बच्चा रोए तब मुंह में डाल दो, तो जब चुप बच्चे के मुंह में आप डाली रखते हैं तो उसको भी रोएगा तो क्या देंगे, हा? वो कहते नहीं जान छोड़े। आप देखिए कि माँ ने अपनी जान छुड़ाई ना, तो लोगों को चुंझने दिए, फिर चूसनियां दी। आज माँ का सबसे बेस्ट गैजेट बच्चे को चुप कराने का पता क्या है, माँ का सेलफोन खुद ही पकड़ा देती है। छोटे बच्चों को आईफोन उस तरह यूज करना आता है जितना बड़ों को नहीं आता। इधर चलाए उंगली तो यूं होता है, ऊपर से बंद करते हैं, नीचे से पुश करते हैं, और उनको टैग शैक पता सब। एक छोटी सी बच्ची थी तो एक दवाई तो मुझे ना यू करके दिखा रही है कि आपके फोन पे वो है, तो मैंने तो समझ नहीं कि, तो उसने चंद सेकंड में आपको होता कि यूट्यूब खोल ली कम फोन पे। फिर एक वो तो मैं जो कह रही थी मैं कर रही थी, उसने मुझसे, आप बिलीव करें कि 3 या 4 साल की बच्ची, यानी थोड़ी तितबित बोलने वाली बच्ची थी, जो वो कह रही थी मैं करती जा रही थी, उसने मुझसे यूट्यूब पे एक कार्टून जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, कोई मारूफ नहीं था, वो उसने मुझसे खुलवाया, स्पेलिंग बुलवा के बोल रही थी लिखो एस लिखो वी लिखो पता नहीं क्या लिखो, जो कर रही थी। तो जब मैंने किया ना तो वो लिस्ट आ जाती है ना, तो जो उसकी साउंड थी ना उसके साथ 2-3 लफ्ज लिखे, तो वो यूट्यूब की जो लिस्ट है उसमें, तो मैंने उसको क्लिक किया, तो पहले एक चला कहती ऐसे किया, तो मैंने दूसरा चला कहते तो उछलने लगी, कहती यही है, तो माँ कहती ये खुद चलाती है घर में। अब आप बताइए कि ये दिमाग ये ब्रेन बच्चे का अगर हम पॉजिटिव यूज करें तो ये हमारी एनर्जी है। देखिए मेरा बच्चा तो मेरी ताकत है, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता था, अल्लाह ने माशाल्लाह एक तोहफा दे दिया, चलता फिरता जो कंप्यूटर चलाता है, मेरा बच्चा मेरे कंप्यूटर के काम करेगा। मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, अल्लाह ने बच्चा जवान कर दिया, वो ड्राइविंग करता है, वो मेरे काम करे। जब बच्चे आपकी सिखाई हुई स्किल्स को आपकी मर्जियों के खिलाफ चला रहे हैं तो समझिए आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सब लेना है इनसे, लेकिन आपने इनको अल्लाह के रास्तों में लगाना है, और अल्लाह के रास्तों में कब लगाएंगे, जब आप खुद लगेंगे। फिर इसी तरह ये जो उम्र होती है ना 4-6 साल की, जिसमें घर में एक से ज्यादा भी बच्चे होते हैं, दो मतलब भाई बहन है या कोई और भी, इस उम्र में बहुत नेगेटिव आते आ जाती हैं बच्चों में। नंबर एक स्टिंजीनेस, मसलन कंजूस होते हैं बच्चे, छोटी सी बात पर होते हैं, मेरी चीज ले गया, मुझसे नहीं देगा, लड़ाइयां घर में सारे दिन मुकदमे ही है। मैं सोचती हूँ कि माँ अगर वकील होती तो सबसे कामयाब वकील होती, जितने केसेस उसके पास एक दिन में आते हैं वो तो बड़े बड़े लॉयर्स के पास भी नहीं आते होंगे। किसी के साथ गाड़ी में सफर कर रही हो ना, तो स्कूल आने तक मैं कम अज कम माँ को मेरी मुझे इधर बैठना था। हाँ, अब इस उम्र में बच्चों को कैसे टैकल करें? एक चीज याद रखिए, आपके जो दो बच्चे हैं ना, तीन, उन दोनों तीनों के बीच के ताल्लुक कैसे हैं, ये भी आप सिखाएंगी। बस तमाम ना समझियो में अपने बच्चों को दूसरों का दुश्मन खुद ही कर देते हैं। खालो खालो भाई खा लेगा, क्या मतलब है भाई इतना भूखा है कि तुम्हारे ऐसा खा देगा, गलत बात है। फिर एक बच्चे क्या कसूर होता है, मार दूसरे को देते हैं। अक्सर देखिए जो खराब काम करके आते हैं ना, वो आता है फिर उसने ये लिया तो हम उसके ऊपर जाकर सुन के जाके दूसरे को थप्पड़ मार लेते हैं, बाद में पता चलता है जो शिकायत लगा के ना कसूर इसका ही था। लेकिन आपस का प्यार, बच्चों को आपस में भाई बहनों के साथ प्यार मुरव्वत शेयरिंग केयरिंग, एक कैंडी भी है ना बेटा शेयर करो, आपने दोनों को ही देनी थी ना। हम क्या करते हैं ना समझी में, जल्दी से बैग से निकाली, एक एक को दी, एक दूसरे को दी, नेवर डू दिस। एक को दे के चलो अब भाई को दो, हाँ अच्छा सब्र करो, दो कुछ नहीं होता, उसको देगा। फिर जिसको दे चुके अब आप उसको एक और निकाल के दें कि अब तुम भाई को दो, क्या ये मुश्किल है? इस तरह से बच्चों को नेकियों में डालें कि उनको पता भी ना चले कि क्या करें। फिर शाउट करना, चीखना, चिल्लाना, ये चीजें खत्म करें। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं किसी के साथ थी तो जो उनका बच्चा था ना एकदम रोता हुआ आ गया ना किसी और की शिकायत हो जाते हुए, तो घर का जो छोटा बच्चा था ना एकदम जैसे बच्चे यहाँ मुंह खोल के रोते हैं रोता हुआ आ गया, तो कहने लगा कि वो मुझसे कह रहा है कि मुझे अपनी जैकेट दे दो। तो अब वो तो बेचारा मजलूम बन के आया, रो भी रहा है और शोर भी मचा रहा है। अच्छा अमूमन ऐसे वक्तों में माँ क्या कहती हैं, अच्छा अच्छा नहीं सबर करो सबर करो, मैं तुम्हें और दे दूंगी, ये कर दूंगी, या उस बच्चे को डांटने लग जाती हैं। तो मैं पास ही थी तो मैंने उसके इधर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा कि वो आपकी जैकेट मांग रहा है, तो मैंने कहा अब उसका कहना ले लो अल्लाह और दे देगा। लेकिन फिर मैंने तो जैसे कहा, अब वो बच्चा कैसे कहते, वो किसी क्लिप में अगर हुआ मुझे याद करे मैं आपको दूंगी कल देखे, अब वो हाल ही हो गया कि उससे कोई चीज छीने ना तो अगर कहता ले लो अल्लाह और देगा उसके मुंह से प्यारा भी लगता है। अब सीख गया ना, उसे सबर भी सीख लिया, उसको ये भी पता है कि जब कोई मुसीबत आती है माँ साहब मुसीबत, कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह तुम्हें उससे अच्छा भी बदला दे देता है। एथिक्स सिखाए, अखलाक सिखाए, शुक्र सिखाए। आप एक रोटी है ना उसके आप देखिए ना, ये ना समझी की बात है ना, घर में आप रोटियां पका रही हैं, सारे बच्चे टेबल पे बैठे, ये रोटी इसकी इसको कोई ना छेड़े, ये रोटी इसकी है सबर, ऐसे करते हैं ना, कभी ना करें। आप रोटी बना रहे हैं ना, आप उस एक बच्चे को चलो इसके टुकड़े करो, एक उसको दो एक इसको दो, शेयर करो, फिर दूसरी रोटी दूसरे सारे सीखे, छोटी छोटी बातों से अगर। और ये सब कब होगा, जब आप अपने बच्चे में इंटरेस्ट लेंगे। अब आपका तो अपना ही दिमाग कहीं और घूम रहा था, तो आप तो वैसे ही जान जुड़ाने के लिए रोटियां पका के खिला रहे थे, तो आप कहते हैं शोर ना करो और ला देती हूँ, फिर बच्चे खाने के टेबल पे आके नखरे करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो माएं फिर एक होटल समझती हैं कि हमने होटल खोला हुआ है, फिर वो कहते हैं अच्छा फिर ये ले आऊं बेटा फिर वो ले आऊं बेटा, ये नहीं करना चाहिए। कभी बच्चे को ये एहसास ना दिलाओ कि ये खाना नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिये हर एक को अपनी पसंद प्यारी होती है। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे करेले नहीं पसंद, मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, भिंडियां नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, तो फिर क्या किया माँ ने, वो छोड़ दिया, पकाना ही छोड़ दिया, उनको देना नहीं छोड़ा। आपने जिम्मेदारी ले ली इस बात की कि ये सारी जिंदगी अल्लाह की बनाई हुई इस नेमत यानी टिंडों से महरूम रह गया। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, घर में 3-4 लोग तो होते ही है ना, बाप है माँ है, दो बच्चे लगा ले घर का कोई बूढ़ा, चले हम लगा लेते हैं किसी फैमिली में 7 पीपल है, एक सिंपल सा घर में माहौल ऐसा बना लीजिए कि हर दिन किसी एक ही पसंद की चीज पकेगी। मिसाल है कि अब्बू को सब्जी पसंद है, चले आज सब्जी पकेगी और आप कहते मैंने नहीं खानी, बेटा आप अपने अबू की पसंद की चीज नहीं खाएंगे, अब उसको बाप से करीब करें। आज सब्जी सब क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमारे अबू को सब्जी पसंद है। कोई कहता है मैंने नहीं खानी, बेटा अब्बू को सब्जी पसंद है, अब्बू अब्बू की सब्जी अब्बू के नाम लगा दें, ठीक है। चलिए कल का दिन गुजर गया, आप घर का बड़ा बच्चा, वो कहता है क्या पकाते, उसको क्या पसंद है, लेट्स सी उसको पास्ता पसंद है, आप उसी पास्ता बना लें, बनाना एक ही खाना है। अब आप अपने पास्ते में चाहे अचार डालें, बाद में मिर्चें डालें, चाट मसाला डालें, कम अज कम बच्चों के सामने वही खाएं। जब आप कहते हैं ना मैंने पास्ता नहीं खाना, तो वो भी कहते हैं हमने करेले नहीं खाने। आज क्या कि आज मैं पास्ता इसलिए खा रही हूँ कि मेरे बेटे को पसंद है, प्यार करे, लाड करे, मोहब्बत करे, अब वो भी खा लिया सबने। आप देखिए फैमिली कितनी जुड़ती है। अब तीसरे दिन बारी आगी दादी की, दादी को दाल पसंद है, अब आप कहते हैं तो दाल चावल पकेंगे, दादो की पसंद, हाँ मैंने नहीं खानी, बेटा दादो को पसंद है आप नहीं खाएंगे, चले वो दाल तो निकल जाएगी, दादो का प्यार अंदर आ जाएगा, उस दिन दाल चावल खिला दे। आप देखिए फिर बच्चा इंतजार करेगा कि अब मेरी बारी किस दिन है। हफ्ते में सातों दिन सात मुख्तलिफ चीजें पकाएं और मोहब्बतों के नाम पे खिलाएं, सबर आएगा, बर्दाश्त आएगा, सेम फैमिली सेम बॉन्डिंग आएगी। देखिए जब हम चीजें खाते पीते हैं ना, उसका हमारे मिजाज पे बहुत असर होता है। अगर मिर्चे खाई तो सारे घर में मिर्चे खाएंगे, सबका मिजाज हाइपर हो जाएगा, है। अब आप खा के बैठी करेले की वहां और ऊपर से आपने लस्सी भी पी ली, आपका पेट तो फूल रहा है, अब आपको तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। आपके एक बच्चे ने सिर्फ बर्गर खाया था हल्का सा, उसको तो भूख लग गई, आप दोनों एक दूसरे के जज्बात ही नहीं समझेंगे। एक साथ बैठ के खाना और एक चीज खाना घर वालों को करीब करता है, सादगी आती है। आपने अपनी नानियों दादियों के किस्से सुने होंगे, हमने अपने वालिद के मुंह से ये बात बहुत दफा सुनी है कि एक ही सालन बनता था थोड़ा सा, उस वक्त कोई इतने लंबे चौड़े खाने नहीं पकते थे, तो माँ ने खाना बनाना और छोटी छोटी कटोरियां होती थी, हर बच्चे के हिसाब से वो डोई में डाल डालकर एक एक डोई सालन डाल देना और रोटियां पका के रख देनी, आजो। अब एक आया अपनी टोंगी पकड़ी साथ ही रोटी पकड़ी बैठ गया, दूसरा आएगा मैं क्या कद्दू मैंने नहीं खाना, अच्छा नहीं खाना, बाकी बच्चों को कहती थी तुम खा जाओ इसका, अब वो दूसरों की मौज हो जानी। वो जैसे जन्नत में लोगों को जन्मियों के भी घर मिल जाने हैं तो उन्हें खुशियां मनानी, और गुनाह करते हमें और तुम्हारे घर मिलते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि अब किधर गया नखरा, कुछ नहीं, थोड़ी देर बस अब पीछे हो जाना, अब भूख लगनी, क्या सारे इधर उधर हो तो जाके कहना चंगेर खोलनी, रोटी नहीं, रोटी तो बड़ी होनी, तो वो सालन की कटोरी कोई नहीं थी, माँ ने दूसरों को खिला दी, तो चाहे अचार ढूंढो या चटनी कोई पकड़े उससे खानी। अगली दफा हमने नहीं कहा कि हमने कद्दू नहीं खाना, ठीक हो गया ना। कभी गिव अप ना करें, यानी एक टिप लिख ले अच्छी माँ होने का राज, डोंट गिव अप। गिव अप का मानिए हिम्मत नहीं हारना। हम इतनी जल्दी बच्चों के आगे गिव अप करते हैं कि अल्लाह की बना हमारी आधी टांग तक का बच्चा हमें बार बार बेबस कर देता। मैंने गिव अप नहीं होना, मैं इसकी माँ हूँ, प्यार से इज्जत उसको उतनी बड़ी दें जितनी किसी बॉस को देते हैं, लेकिन बच्चे की बात नहीं माननी, मनवाए अपनी, उसको ये लगे कि मेरी मानी है। आज वो अड़ गया ना कि मैंने ये नहीं खाना, बहाने से आपने उसको वही खिलाना है, उसकी कमी आप कभी लाड से पूरी करें, प्यार से पूरी करें। जब शुरू के दो ढाई साल इस हद तक आप बच्चे के ऊपर कंट्रोल ले चुके होते हैं ना, लेकिन इसमें ये याद रखिए कि जुबान कम से कम इस्तेमाल करें। जब हम करवाते भी अपनी बातें फिर जुबान भी इस्तेमाल करते हैं, तो बाद में बच्चे सोचते हैं हमारी अम्मी बस स्टबन है या अम्मी अपनी बातें मनवाती हैं, वो नहीं, मुंह से प्यार मेरा बच्चा लेकिन बात अपनी बनवानी है। तो आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उन चीजों का। फिर आप देखिए कि इसी तरह से बच्चे को बहादुर बनाना, इस उम्र में अंधेरे से डराना और चिड़िया से जिन से डराना और चुड़ैल से डराना और परियों से, ये अब छोड़ दे, ये बच्चे नहीं डरेंगे इन चीजों से, और खौफ टालना भी नहीं चाहिए बच्चे का। फिर उसके बाद अगली चीज आप देखिए कि जैसे ये मौसम है ना, अब आप कहते हैं मौसम की शिद्दत है, क्या होगा आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि गरीबों के बच्चे बेचारे वहां की सर्दी में बगैर जूते के भी फिर रहे होते हैं, तो यहां अगर आपके बच्चे को बहुत कवर्ड रखना, सिक्योर्ड रखना, इसको ये ना हो जाए ये ना हो जाए, इसकी परवाह छोड़ दें। अच्छा बाद लोग जरासीम कॉन्शियस बहुत होते हैं, जर्म्स ना लग जाए हमारे बच्चे को, कोई दूसरा उनके बच्चे को प्यार नहीं कर सकता, नहीं इसको किस ना करना इसको जर्म्स लग जाएंगे, ऐसी भी ऐसे फोबियाज नहीं पालने चाहिए। हर वक्त डॉक्टर्स पे ले जाना, इसके चेकअप है, इसके वो है, ये बातें ये मेरे ख्याल में तो ये अब थोड़ा सा बच्चे को हम बड़ा करते हैं, अब बच्चे की वो उम्र आ गई है जिसमें मोर अपना हक लेना आता है, 7-8 साल की उम्र। सबसे बेहतरीन तरबियत का नुक्ता इस उम्र में क्या है, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब इसी नींद, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हों, और जब 10 साल के होने पे ना अदा करें तो सख्ती करो और उनके बिस्तरों को अलग कर दो, या अगर कोई ना पढ़े तो उनको तादीबन सजा दो। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी ने ये जो बात कह दी है ना, ये इतनी पुर हिकमत बात है कि 6 साल की उम्र तक माँ बच्चे को अपने और अल्लाह के प्यार के करीब करे और 7 साल के करीब बस उस बच्चे को उसका अमली नमूना बना दे। पहली बात है कि जो बच्चा खुद माँ को और बाप को 6 साल की उम्र 7 साल की उम्र तक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते देख चुका है, क्या 7 साल की उम्र में उसके लिए नमाज कोई नई बात होगी? फजर के वक्त अपने घर का माहौल बदल दें, चला दें लाइटें, हीट है तो कम कर दें, एसी लगे हुए तो उसको बंद कर दें, इस तरह से अपने घर का माहौल करें कि जागने को दिल करे। आज बड़ी दुख और तकलीफ के साथ से कहूंगी, बल्कि रोग है रोग, आज हमारी जिंदगी की बेबरकती की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे सोने और जागने के औकात चुके ठीक नहीं है, तो फजर के वक्त उठने के आदाब ठीक नहीं है। बिलीव मी, अगर फजर के वक्त कोई एक उठ जाए तो घर कब्रिस्तान लगता है, और डरते डरते वो बंदा उठ के नमाज पढ़ता है कि अब किसी की आंख ना खुल जाए। मुसलमानों के घर सुबह के वक्त कब्रिस्तान नहीं, वो बाजार लगते हैं। रौनक छोटे बच्चे से ले ले, और आप फील करें जो 40 डेज के अंदर का बच्चा होता है ना, वो आधी रात को उठ जाता है, पहले तो माँ को कहता है उठो तो हज्जत पढ़ो, ऐन नमाजों के वक्त में बच्चे उठ जाते हैं। आप कभी इस बात से ना डरें कि अब ये उठ गए तो फिर दोबारा कैसे सोएंगे, ये आदत डली हुई इनकी इंशाल्लाह 60-70-80 जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी है तब तक इनके साथ जाएगी। फजर का उठना नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, आपको भी उठना पड़ेगा, अगर अभी तक नहीं उठती थी तो अब अपने बच्चे की खातिर उठे। कौन सा बच्चा, 7 साल का नहीं, 7 माह का भी बच्चा, 8 का भी बच्चा, ये आपको देखेगा आपने उनके साथ नमाज पढ़नी है। तस्करा करें, जिक्र करें, क्योंकि जो चीज बचपन से साथ जग जाती है वो मुश्किल ही नहीं लगती, आदत डल जाएगी। अपने मियाँ जी से बैठ के बात करें, अच्छा मूड हो ना कन्वर्सेशन करें कि देखें मियाँ जी जो बात होगी आज तक हो गई, आप और मैं ही थे जो भी था, लेकिन अब ये बच्चा है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मैं उसको कैसे कहूंगी। और बिलीव मी आजकल के बच्चे इतने बोल्ड है, मैंने चंद दिन पहले हम कहीं थे नमाज पढ़ने लगे एक बच्चा इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा था, तो मैंने कहा बेटा आप नमाज नहीं पढ़े, कहते मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैंने कहा क्यों, कहते मेरे अबू नहीं पढ़ते। अब ये जुमला तो वो मेरे वो कहना चाहिए ना कि दिल के अंदर सुराख कर गया, फिर उसके बाद हमने दर्स भी उस पर किया, और बाद में वो बच्चा ऐसा था कि यकीन करे कि आने तक मेरे साथ भी रहा और मुझे छोड़ने भी आया, और इतना मीठा बच्चा था वो। मैंने कहा बेटा आपने ये तो कहा कि अबू नमाज नहीं पढ़ते तो आप नहीं पढ़ते, तो आपके अबू कंप्यूटर यूज करते हैं? नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों करते हैं, आपके अबू तो नहीं करते ना। लेकिन उस बच्चे को का बात सच थी, तो मियाँ से बैठ के बात कर ले, बच्चा तो दोनों का है ना, कि देखे जी आप जो भी है मैं अकेली इसको नहीं कर सकती, आपको उठना पड़ेगा, आप भी नमाज पढ़े। और ये अब धमकी के अंदाज में नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट है, ये शेयरिंग है, ये केयरिंग है, आप के क्या आप पढ़े ना पढ़े आप उठ जाए, ताकि बच्चे को पता चले कि अबू इस वक्त उठते हैं, आप थोड़ी देर के लिए घर से निकल के आ जाए वापिस, बच्चे को पता चले कि अबू इस वक्त नमाज पढ़ने गए। इसके बगैर नस्लें चलेंगी नहीं। इस फजर के वक्त ना उठना शैतान की पहल की, और फजर के लिए उठो क्योंकि इसके उठने में तुम्हारे लिए शैतान से जीतने की पहली खुशी है। एक बड़ी अच्छी स्लाइड है कि रियल हैप्पीनेस इज क्या, वेकिंग अप फॉर फजर विदाउट अलार्म। कितने लोग हैं बगैर अलार्म के उठ जाते हैं, उनके अंदर फितरत का एक क्लॉक लगा हुआ है जो टक टक करके बजता है और इंसान वो काम कर लेता है। ये आदत डाले बच्चों को कि आज तुमने उठाना है कल मैंने, वो डिपेंडेंट ना करें मैं उठाऊंगी तो उठ जाना, नहीं बेटा आपने मुझे उठाना है, आप भी केयरफुल रहे, लेकिन बच्चे को क्यों उठाए, छोटे छोटे बच्चों को आपके अपने इस उम्र के कि बेटा आज तुमने उठाना है, आज के अलार्म तुम्हारे कमरे में, आज तुम करो। हम जहां भी रहें, हमारे बच्चे कहीं भी रहें, अगर हम उनमें इतना इंटरेस्ट लेंगे तो कभी वो खराब नहीं होंगे। मसला बिगड़ता जब हम खुद बिगड़े होते हैं। कितने लोग हैं जो खुद फजर पे उठते हैं तो फिर वो बच्चों को कहेंगे। और देखिए, मैं आपको एक अपनी हार मानते हुए कहूंगी, मैं आपको 101 टिप्स भी यहां से देके चली जाऊंगी ना, हम अपनी पूरी एनर्जी भी लगा लें बच्चों की तरबियत, नस्लें, ये वो, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी ना, हमारे बच्चे सही नहीं होंगे। और अल्लाह की मदद आती है अकीमुस्सला और तस्किया और तहारा, इस तरह से अपने बच्चे के साथ रखें कि उनको यकीन आ जाए कि मेरी माँ जो बात कर रही है वही सच्ची है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब नमाज की आदत डालते हैं ना, तो उसके साथ ही साथ रोजों की आदत डालें। वो कैसे डाल सकते हैं? बच्चे को नमाज की आदत का के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके जहनों में? काफी देर से मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि ज्यादा से ज्यादा बात आज ही हम कर लें। जो बात अभी की है चले इसमें आप लोग शेयर करें, फिर इंशाल्लाह हम अगले सेशन को, बल्कि कल हम बात करेंगे इसमें कि बाकी एज के साथ साथ, क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ सीखना है अभी इंशाल्लाह ताला। अभी सिर्फ नमाज पे हैं, आप नमाज से रेलेवेंट बातें, क्वेश्चन या जो कुछ हुआ, अब आपका हक क्या, बात कीजिए। क्या लगा आपको ये सारी बातें सुनने के बाद? कोई अपनी कमी दिखी, कोई अपनी खता है? वो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी आईना साफ करते रहे लेकिन दाग अपने चेहरे पे थे। हम सोचते आईने खराब है, आईने सही होते हैं, हमारे चेहरों पे धूल है। हमें अभी खुद भी यकीन नहीं है, हम वो माएं बनी नहीं कि जिनके दूध में तकवा था और जिनके अंदर मोहब्बत थी और तवक्कुल था। और ऐसी ही औरतों की कहानियों में से एक कहानी इंशाल्लाह अभी शेयर करूंगी, लेकिन आपको फ्री चॉइस है कि आप कुछ भी लिखे, ऑनलाइन पे भी खोल दीजिए टेक्स्ट। जी आप अस्मा जी, अच्छे से बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह ताला देखिए, बात बहुत कम होती है, ये छोटी सी चीज है, बस उसको ठीक कर लें तो ठीक है, बाद में चलती गाड़ी रुक जाती है, जाके देखे तो एक छोटा सा तार हिला होता है। अल्लाह ना करे हमारे बच्चे बिगड़े हुए नहीं है, कोई रबिश नहीं है, कोई वो उनके अंदर कोई इतना गन नहीं आ गया, सिर्फ हमने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया या हमारा उनके अंदर वो कंसर्न नहीं था। अभी तो मैंने आपको कुछ समझाया भी नहीं, ये करो वो करो, सिर्फ प्यार, तवज्जो, प्यार, मोहब्बत। इंसान समझ के उनके साथ इतना क्लोज रिश्ता अपना कर ले कि उनको वाकई खुशी हो। जी पीछे से आप खा लो।
सारे खुश होंगे, देखो आज मेरी पसंद का है, दूसरा करेगा मिया की पसंद का है, बच्चे की। और एक और बात थी कि जब हम चीज बच्चों को छोटों में देते हैं तो कई दफा कह देते हैं नहीं वो छोटी, उसको ज्यादा देनी चाहिए
जी।
तो ये बड़ी इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि फिर बड़ा बच्चा कहता है कि नहीं माँ मेरे साथ मतलब वो सही नहीं कर। तो मेरी बेटी ने भी मुझे एक दिन कहा कि आपने कई दफा ऐसे किया है कि छोटी को ज्यादा की मम्मा ऐसे नहीं, मैंने ये सीखा, मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा आगे मैं ऐसे नहीं, कुछ
جی بالکل. آپ دیکھیں جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے نا کہ بچوں کو جو اپنی سنیے, تو میں نے اس میں یہ چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز بہت پسند ہوتی ہیں. بچے کی ضد, اس کی اسٹبرنس کو ایکٹیویٹی بنا دیں. چھوٹی چھوٹی بچوں کو کھیل ہی کھیل میں سکھا دیں. آج یہ کل وہ, تم یہ میں وہ, اب تم میری مانو پھر میں تمہاری مانوں گی, اب تم چلو تم بڑے ہو میں پیچھے ہوں, چلو آج گھر میں تم سب کو کھانا دو, آج تم گھر میں پہلے جو, ان کو اپنے ساتھ لگائی رکھے. اور یہ جتنے واللہ ہی یہ سارے جو ہمارے گھروں کے گیجٹس ہیں نا, کہ جنہوں نے شوہروں کو بیویوں سے اور بچوں کو باپ سے دور کے, اس کو لمیٹڈ کر دیں. اگر آپ سوچ لیں نا کہ ابھی ہم اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے, لمیٹڈ ضرور کر دیں اس کا ایکسس. جی ادھر سے آپ ذرا. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے جملے کو صدقہ جاریہ بناتے ہوئے کہ بچوں کو دین سے جوڑیں گے تو یہ ہوگا, میں اس کو اپوزٹ لیتی ہوں. آپ اپنے بچوں کو خود سے جوڑیں پھر دین سے جوڑیں گے. دین خود بخود ان کو سب سکھا دے گا. جن بچوں کو ہم نے خود سے نہیں جوڑا ہوتا نا, وہ دین سے بھی نہیں جوڑتے. پھر وہ ہمارے منہ سے نہیں دین دیں گے. کوئی بڑے ہو کے دھکے کھا کے کوئی دوست مل گیا کوئی ساتھی, کیونکہ ہم سے جڑے ہی نہیں. تربیت کا بنیادی نقطہ جو مجھے غلط دکھتا ہے نا, وہ ہمارا اپنے بچوں کو خود سے نہ جوڑنا. محبت فاتح عالم, نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو. اپنے بچوں کے ساتھ اونچی بولنے ہی نہ, چڑے ہی نہ, شاؤٹ ہی نہ کرے, غصہ ہی نہ کریں. آپ دیکھے گا کہ ان کے اندر آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بارش کی طرح جائیں گی. ہم اتنا اونچی چیختے ہیں کہ اللہ کی بنائے سے لگتا ہے کہ کانوں کے راستے نہیں, ان کے دماغ کے اندر سے پتہ نہیں ہم کیسے چیزوں کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. جی آپ ممنا. الحمدللہ. جی دیکھیں, ماں بننے سے پہلے ماں بننا سیکھ تو لے. کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جب اپنے بچوں سے ڈیل کرتے, میں کہتی ہوں اللہ بھی کیسے دے دیتا ہے ان کو, تو ابھی بچوں کو پالنا ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا کہ کمپیوٹر کو تم ہاتھ نہیں لگاتے, تار لگانی نہ آئے کوئی گاڑی لگاتا, ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم بیٹھتے میں نہ آتا ہوں. بچے چونکہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم بس لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, مس یوز کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کا. جی آپ ادھر سے.
میں اس بات کو اپنے سے لوں گی کہ میں جب چھوٹی عمر میں ماں بن گئی تو مجھے خود نہیں پتا تھا 17-18 سال کی عمر میں ماں بن گئی. تو یہ ایک بات, مجھے الحمدللہ تربیت اچھی ہوئی تھی, وہاں کے ماں باپ کے گھر میں نمازی تھی, تو یہ طرف تھی کہ بچوں کو میں نمازی بنا دوں اور اللہ سے جوڑ دوں. میں نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا وہ یہی ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ کڑپ تھی. میں جب بھی کسی اچھی محفل میں یا کسی بھی جگہ 3 بجے پہ جاتی تھی تو میں سوچتی تھی یہ بھی تو ایک اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں, اللہ میرے بچوں کو بھی نیک کر دے گا. الحمد للہ میں تو یہی سوچتی ہوتی ہوں کہ یہ میری طرف ہے اس کی وجہ سے, ورنہ میرے میں کوئی کوالٹی ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے بچوں کی اچھی کوئی
جی تڑپنے کی ضرورت ہے نا, کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی خیر لے کے دیتے ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنی دعاؤں سے لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتی ہوں, کیونکہ یہ ایک بک ہے میرے سامنے, آپ کو بھی مل سکتی ہے اگر دیکھنا چاہیں دعاؤں کی قبولیت کے واقعات. تو اس میں بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کہ جس میں ماؤں کے واقعات اور دوسروں کے بھی, تو اس میں سے ایک واقعہ صرف سناتی ہوں کیونکہ میں بس صرف چند منٹ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے کوئی اچھی سی کہانی سن کے جائیں تاکہ آپ اس سے فائدہ لیں. دعا کا سہارا بہت بڑا, یعنی یہ ہر سیشن کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی کہ دعا ضرور کریں. کبھی اپنے بچے کو دعا دینے سے محروم نہ کریں. ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ عرش تک جاتی ہے, لیکن جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ تو کر ہی سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مایوس بھی نہیں کرتا. تو یہ کہانی آئیے پڑھتے ہیں. کہانی کا نام ہے ربی لا تذرنی فردن, یعنی یہ ان سب کے لیے بھی جن کے بھی اولاد نہیں ہے, تو وہ اللہ سے کیا دعا کرے. یہ لکھتی ہیں کہ میری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے, میری بیوی یعنی آدمی ہے سوری, میری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے. میری بیوی بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھی, مال و دولت کی بھی فراوانی تھی, زندگی بڑی آسودگی اور راحت کے ساتھ روان دوان تھی, لیکن دل میں ایک کسک تھی. ایک شدید قسم کی محرومی کا احساس تھا. ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. علاج کے لیے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے, بہت سی دوائیں استعمال کی, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی علاج کروایا. کوئی ڈاکٹر اپنی تشخیص میں مجھے اس بانجھ پن کا ذمہ دار ٹھہراتا تو کوئی کہتا کہ میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ سمجھتے نا, یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہم نہیں ہیں. علاج کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا. یہ محرومی ہمارے اعصاب پر اس قدر سوار تھی کہ گھر میں ہماری گفتگو کا زیادہ تر حصہ اسی موضوع کے متعلق ہوتا. ایسی ہے, ہمارے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہم زیادہ وقت اس کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں, اور جب چیز آتی ہے تو بعض دفعہ ہم اس کو صحیح طرح سے ہینڈل بھی نہیں کرتے. جو شخص بھی کسی ڈاکٹر یا طبیب کے متعلق ہمیں بتاتا ہم بلا تاخیر اس کے پاس پہنچ جاتے, لیکن گوہر مقصود کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگا. اب مجھے ایسا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے. ایک شام میں سڑک پار کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص بھی سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے. اس کی بینائی کمزور تھی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھی سے سڑک پار کروانے لگا. جب ہم نے ایک سڑک پار کر لی اور دو سڑکوں کے درمیان بنے ہوئے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اگلی سڑک کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے تو اس بزرگ نے مجھ سے پوچھ لیا, میاں تمہاری شادی ہوئی یا نہیں؟ میں نے جواب دیا, جی ہاں ہو چکی ہے. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بابا جی میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. میں نے علاج کے لیے دنیا جہان کی خاک چھان ماری, کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہیں چھوڑا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ بزرگ شفقت بھرے لہجے میں بولے, بیٹا تم نے اصل مقام پر تو رابطہ کیا ہی نہیں. میرا بھی تمہارے ہی والا مسئلہ تھا, شادی کے بعد کئی سال تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا رہا جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی. تو انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا گیا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. الحمدللہ آپ میرے 7 بچے ہیں, تم بھی امید کا دامن نہ چھوڑو اور دعا کا سلسلہ جاری رکھو. میں گھر پہنچا, اپنی بیوی کو یہ ماجرا سنایا, دل کو لگی اور ہمیں بڑا پر آنا یقینی تھا. ہم وہی مقام نظر انداز کیے رہے. ہم نے پختہ عزم کیا کہ اب اس کو کوتاہی کا ازالہ کریں گے. ہر چیز کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک وقت ہوتا ہے. کافی عرصے پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون نے بھی میری بیوی کو یہی نصیحت کی تھی, لیکن اس وقت تک ہم ڈاکٹروں سے بھی ہماری امیدیں نہیں تھی. ہم نے اسے سری انداز میں لیا لیکن اب ہم ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے تھے. اب ہر فرض نماز میں, رات کی تنہائیوں میں, قبولیت کے اوقات میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہوتی تھی کہ رب ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری التجاؤں کو سن لیا اور ہمیں ایک پیاری سی بچی سے نواز دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ ہی ہے جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. بچی پیدا ہوئی, ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اب ہر وقت ہمارے ہونٹوں پر یہ دعا رہتی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, ہم بنا. سورۃ فرقان کی آیت 74 ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ بند راستوں کو کھول دیتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور جتنا کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ آن لائن سے لکھتے ہیں کہ ریسنٹلی ہرڈ اباؤٹ دی ماں کی دعا شیخ سدیس کی, یعنی ماں سدیس جو حرم کے امام رہے ہیں, تو ان کی ماں کے بارے میں مجھے خود ان کی سسٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ تنگ کرتے تھے اپنی ماں کو تو میری ماں ان کو غصے میں کہتی تھی کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. تو ان کی دعا قبول ہو گئی نا. تو دعاؤں کا میرا واقعہ ہر روز ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. وقت پورا ہو گیا, ابھی تسلی تو نہیں ہوئی لیکن کافی ہے. پوری تسلی ہو گئی تو پھر بات بھی تو پھر آپ کا لائیں گے بھی نہیں نا. آپ کی بک آج بھی آئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن اینی ٹائم امید ہے. آپ کو پتا ہے کہ چھٹیاں تو شپمنٹ کہیں رکا ہوا ہے, تو انفارمیشن تو یہی مل رہی ہیں کہ آج کسی وقت بھی ڈیلیور ہو رہی, کل آپ کو بک دیں گے انشاءاللہ. یہ نیک ماؤں کا مثالی کردار, دعا کریں کل تک آ جائیں. اس میں بہت ساری کہانیاں سٹوریز ہیں نبیوں کی مائیں باقی. تو جب بک سامنے ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم کل اس کو بک کے تھرو بھی پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر واسم جزا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ایک چھوٹا سا میسج مدرس کو آپ دیجئے جو آپ کی دوستیں ہیں جو نہیں آئی ہوں گی یا کچھ بھی, کہ ہم نے یہاں ارینج کیا ہوا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی انٹین کریں گے ان چار دنوں میں, تو کل اگر آپ کے ساتھ بچے آتے ہیں یا آپ کی دوستیں جو بچوں کی وجہ سے نہیں آئیں تو ان کو ساتھ لے کر آئیں, تو اسی پورے وقت میں آپ کے بچے بھی سیکھیں گے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس یہاں بچوں کا اسکول بھی ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی
ایک بات آئی فون ان کے بارے میں سنا تھا کہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بالکل نہیں دینے چاہیے, کیونکہ جو اس میں بیبی ہوتے ہیں دو تین سال کے یا اس سے بھی کچھ بڑے لڑکے ہیں لڑکیاں, وہ ایک تو وہ ان سے مطلب غلط سیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ ماں بھی نہیں بن سکتی اتنا کہ ان کے ریئر جاتی ہے اندر. تو وہ
جی بالکل, یہ جو بھی الیکٹرانکس ہیں اس کے اثر جاتے ہیں, کم سے کم یہ چیزیں یوز خود بھی کم کرنی چاہیے اور بچوں کو تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی شام کو ہول ملیا سائٹ پہ ایک درس ہے, اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو انفارمیشن لے لے بھائی سے. سسٹر زمرد ہے ان کا نام, جی سسٹر زمرد کے گھر میں درس ہے 5 بجے شام کو, 2 گھنٹے بعد انشاءاللہ.
الحمد للہ بہت بینیفیشل, اچھی اچھی ٹپس مل گئی ہم سب کو. کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا, کہ سب کی اپنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ پسند ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے ہم نے, ہے نا؟ بالکل الحمد للہ. تو جی ٹھیک, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے بھی یہ ساری جو بھی باتیں کی ہیں اس کو فوراً آج اپلائی بھی کرنا ہے, یعنی اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے ٹرائی تو کر کے دیکھیں کہ اس کا اثر کیا نکلتا ہے نا. اگر کوئی بھی جگہ ہماری اپنی کہیں کوتاہی تھی تو ان شاء اللہ اس کو ہم صحیح کریں گے, اور اللہ سے دعا بھی بہت کریں گے جو کس طرح نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے. الحمدللہ چلے کہ ہم بھی یہ پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, زیادہ اس کو پلانگ نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر ان کے سیر واسن جزا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.